नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने मिशन अनमोल के अंतर्गत नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल और स्क्रीनिंग का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष किया। दिल्ली जल बोर्ड के वार्षिक भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को होने वाले आईपीएल मैच के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में देश विदेश के उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और रबर उद्योग इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रबर उद्योग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहा है।
इस रबर इंडस्ट्री ने अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को दिल्ली में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रबर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करने के लिए आमंत्रित भी किया। एशिया के सबसे बड़े रबर उद्योग आयोजन के रूप में पहचाने जाने वाला यह एक्सपो 10 अप्रैल तक आयोजित रहेगा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 400 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक और 45,000 से ज्यादा आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है, जो उद्योग में नवाचार, सहयोग और विकास को नई दिशा देंगे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा ढांचों को मान्यता दी जाएगी, वहीं आगामी निर्माण कार्य में नगर निगम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कॉलोनियों को नियमित करने के निर्णय के साथ वहां के निवासियों को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करवाने लिए आगे आने के लिए प्रेरित भी किया।
रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान वो बना सकें।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने दीर्घकालिक शहरी चुनौतियों का सामना किया है। इनमें से बहुत सी समस्याएं पिछली सरकारों तथा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण अनसुलझी रही। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के निवासियों के लिए व्यवस्थित और चरणबद्ध शहरी सुधार के प्रति वचनबद्ध है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कॉलोनियों में सभी प्लॉट और भवनों की जमीन का इस्तेमाल शामिल किया गया है। इन कॉलोनियों को आवासीय कॉलोनी माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नियमितीकरण मौजूदा निर्मित संरचनाओं पर यथास्थिति के आधार पर लागू होगा और अपवर्जन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आने वाली 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को अनुमोदित लेआउट योजना की आवश्यकता के बिना नियमित किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने दिल्ली में सस्ते आवास प्रदान करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान एमपीडी 2021 के अंतर्गत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट डीओडी नीति के नियमन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली नए चरण की सुनियोजित और समेकित शहरी विकास का साक्षी बन रही है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
श्रीमती गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत राजधानी के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि 1,731 में से 1,500 अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है।
पूरी 1,511 कॉलोनीज को आज ऑथराइजेशन की ओर पूरी तरीके से लिया जा रहा है और एमसीडी द्वारा इसके नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप को जारी करेगा और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सारी कार्रवाई अब सरकार द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से स्वागत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 45 दिनों के भीतर कन्वेंस डीड जारी करने की समय सीमा तय की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है, जिससे लोगों को उनके अधिकार आसानी से मिलेंगे। छोटे दुकानदारों को भी योजना में शामिल करते हुए 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों को शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत शहर में सस्ते आवास और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के वार्षिक भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। सुल्तानपुरी, 80 गज, हरिजन बस्ती और इंदिरा झील कॉलोनी में कल से दिन पानी की आपूर्ति नहीं होगी। वहीं निजामपुर गांव, गढ़ी रंधाला गांव और रोहिणी के कुछ सेक्टरों में कल पानी की समस्या रहेगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार को रोहिणी सेक्टर 4 के कुछ पॉकेट्स, किराड़ी, अमन विहार, निठारी गांव, मुबारकपुर और कराला गांव सहित आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों को आवश्यकतानुसार पहले से ही पानी इकट्ठा करने की सलाह दी है। इसके अलावा नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नई शहरी विकास नीतियों का स्वागत किया। श्री सचदेवा ने कहा कि जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर जहां है जैसा है के आधार पर नियमितीकरण से करीब 50 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है और अब मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे अब लाखों लोगों को मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि देशभर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है और ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 96% तक हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट पूर्व स्तरों के लगभग 70% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री दोगुना करने का नया आदेश जारी किया है।
5 किलो के सिलेंडर्स फरवरी महीने में एवरेज सेल पर डे लगभग 77,000 थी। कल भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो FTL सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है।
दिल्ली सरकार ने मिशन अनमोल के अंतर्गत नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल और स्क्रीनिंग का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दिया है। इसका उद्देश्य जन्मजात बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस विस्तार से कई प्रकार की मेटाबॉलिक, एंड्रोक्राइन और अन्य जन्मजात रोगों की शुरुआती जांच की जाएगी, जिससे नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बड़े पैमाने पर इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए मानव संसाधनों को और मजबूत बनाना है, जिसके लिए कुल 148 पद स्वीकृति किए गए हैं, जिनमें मौजूदा 73 प्रयोगशाला और फील्ड कर्मचारियों के पदों को जारी रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि बुधवार को होने वाले आईपीएल मैच के कारण दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
इन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं स्टेडियम के आसपास केवल अधिकृत लेबल वाले वाहनों को पार्किंग मिलेगी, जिसमें वाहन संख्या और चालक का मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है। दर्शकों के लिए माता सुंदरी पार्किंग, वेलोड्रोम रोड, शांति वन और राजघाट क्षेत्र में पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन स्थानों से मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले बस सेवाएं संचालित होंगी और मैच समाप्ति के बाद भी 1 घंटे तक जारी रहेंगी। ऐप आधारित टैक्सी और अन्य टैक्सियों के लिए पिकअप और ड्रॉप के लिए स्टेडियम का गेट नंबर 2 तय किया गया है। यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन मार्गों से बचे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और यात्रा की योजना पहले से बनाकर ही निकलें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गुरु अर्जुन नगर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 संचालकों सहित 10 टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी रोड साइड असिस्टेंस पॉलिसी बेचकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे और प्रति पॉलिसी 3,000 से 4,000 रुपए वसूलते थे। छापेमारी के दौरान मौके से फर्जी प्लास्टिक पॉलिसी कार्ड, ग्राहक डेटा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि गिरोह पिछले 6 महीने से सक्रिय था। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 800 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल होने वाला 1 तिपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध रूप से शराब हरियाणा से खरीदकर राष्ट्रीय राजधानी में पोर्टर ऐप की मदद से सप्लाई करते थे। मामले में आगे की जांच जारी है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी ने कालकाजी क्षेत्र में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र में जलभराव की समस्या कम होगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को वैश्विक फिल्म हब बनाने की दिशा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिल्ली के क्रिएटिव और ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जो दूसरों की सेवा में अथक परिश्रम करते हैं और स्वस्थ विश्व के लिए काम करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एक खुशहाल, उत्पादक और समृद्ध समाज की नींव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कहा कि अच्छा स्वास्थ्य बेहतर जीवन की नींव है और दिल्ली को स्वस्थ तथा सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्लीवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी। राजधानी में आज दिन के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने मिशन अनमोल के अंतर्गत नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल और स्क्रीनिंग का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष किया। दिल्ली जल बोर्ड के वार्षिक भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को होने वाले आईपीएल मैच के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।